हरे कृष्ण। तो कोई बता सकते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है?
कर्मयोग।
कौन किसने बताया? हरि बोल। मुझे के लिए बोलेंगे हरि बोल। कोई बोली नहीं है? क्या हुआ, ठंड लगी सबको? सबके पास भगवद गीता है, थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 13 श्लोक, बहुत ही जो है मुख्य श्लोक है। इसको अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, रोज जरूरत पड़ती है श्लोक के इस्तेमाल करने के लिए। हरे कृष्णा, शोर ना करें बच्चे। तो हर रोज हमें इस श्लोक को अपनाने की अपने जीवन में जरूरत पड़ती है, और अधिकतर आप देखेंगे कि लोगों के प्रश्न इसी श्लोक के आजू बाजू घूमते हैं। ज्यादातर लोग यही प्रश्न पूछते हैं, तो जी क्या करें, कैसे करें, वहां गए थे, यहां गए थे, प्रसाद में ये प्रॉब्लम। तो प्रसाद से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस श्लोक के द्वारा आपकी सॉल्व की जा रही है, भगवदगीता के द्वारा। इस श्लोक को पढ़ेंगे, यद्विशिष्ट आशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे भुजन्ते ते तु अघं पापं ये पच्यन्ति आत्मकारणा। यद्विशिष्टानश्नौ सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषः भुजन्ते ते तु अघं पापं ये पच्यन्ते आत्मकारणा। यद्विशिष्टानश्नौ सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु भुजन्ते ते तु अहं पापं ये पश्यन्ते आत्मकारणा। यद्विशिष्टानश्नौ सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषु भुजन्ते ते तु अहं पापं ये पच्यन्ते आत्मकारणा। प्लीज रिपीट, कोई दोहराइए इसको, बोलिए। यज्ञशिष्टानश्नो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुजन्ते ते तु अघं पापं ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। माताजी, यज्ञशिष्टान् अश्नो सन्तो तात्पर्य और इसका अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अब ध्यान पूर्वक सुनिए अनुवाद। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य,
भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सर्वों के आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति की कलवज से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? ये संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना मृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा वयं ददाते शब्दकांतिकं। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतां पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजानं सहगणगणनाथाद्वितं सहस्रजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पारां सहगण ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका राधा तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि भवेद्भिः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सास्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पुरुषकारिणे। समझ में आया सबको श्लोक? डेंजरस श्लोक है, चोर पाप जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया इसके अंदर। आप में से कितने लोग हैं जो इस श्लोक का अपने जीवन में पालन करते हैं? 1 2 3 4 5 6 भोग नहीं करते, लगाते हैं खाते हैं छोड़ देते
हैं,
भाषा भी खाते हैं। क्या करते हैं, क्या है? अच्छा पार्शली है, ओके ओके। बाकी जिस लोगों ने हाथ खड़ा फुल टाइम प्रसाद महाप्रसाद जी तो ये बहुत समझने का श्लोक है। काफी समय पहले मैंने सुना था जब इसके अंदर शब्द 2008 में श्लोक सुना था, जब ये पहली बार मतलब समझा था, पढ़ा उससे पहले भी था। तब जब चोर शब्द और पाप सुना तो एकदम दिल ढह जाता है सुनकर। चोर है हम लोग, देखा जाए तो सच में चोर है। जितने लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया या जितने ने खड़ा भी किया है, जब हम डिटेल में इसको देखेंगे तो हमें लगेगा सबके सब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आप देखिए कि चोर किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने एक घर में अपने टेबल बनवानी है, टेबल चेयर बच्चों की पढ़ाई के लिए, ठीक है। अभी आपने कारपेंटर को बुलाया, जैसे प्रभु जी मान लीजिए कारपेंटर की शॉप है, और आपने इनको फेविकॉल लाके दिया, प्लाई लाके दी, कीले लाके दी, लकड़ी लाके दी और बोला कि देखिए भाई साहब हमारे घर के अंदर बैठ के आप टेबल चेयर बनाइए। ठीक है, उसने बनाना शुरू कर दिया। 10 दिन का समय लिया, 10 दिन के अंदर आपको मैं बना कर दूंगा। 10वें दिन क्या हुआ, किसी काम से हमको घर से बाहर जाना पड़ा। जब हम वापिस आ रहे तो देखा क्या कि घर के बाहर से प्रभु जी ने 2 चेयर कंधे पे ऐसे रखी हुई हैं और लेके चल दिए। तो पीछे से आवाज आ गई, हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, चोरी करते हो, इधर आओ चोरी करते हो भाई, हमारे घर का सामान बिना बताए रखू चक्कर, ऐसे बोलेंगे, चोरी तो बोलेंगे। हाँ, लेकिन अभी अगर सुनिश्चित को क्या करना चाहिए था, अगर उसे चाहिए था तो क्या करना चाहिए था? हाँ, मांग लेना चाहिए था कि भाई देखिए प्रभु जी मेरे ना घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने बनाया है, आप तो पैसे वाले हैं, 4 चेयर बनवाई हैं, 2 तो आपके घर में ही हैं, 2 फिर बाद में बनवा लेना और 2 मुझे आप गिफ्ट कर दीजिए। अगर उसके मन में आता वो रईस व्यक्ति था तो वो क्या कह सकता है, ठीक है आप ले जाओ, कहेगा कि नहीं कहेगा? अगर किसी ने रिक्वेस्ट करी तो हम दे देंगे, तब वो व्यक्ति चोर कहलाएगा? तब नहीं कहलाएगा। तो अभी देखिए इस पूरी सृष्टि के अंदर जो भी चीजें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है? भगवान के द्वारा। मान लीजिए गाजर, मूली, दाल, गेहूं, जितना भी उग रहा है, है? इसको कौन, बीज कौन उत्पन्न करता है? श्री कृष्ण। अहम बीज पद पिता। सारी की सारी सृष्टि में मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, चिड़िया हो, जानवर हो, हर एक चीज जो ग्रो करती है, बढ़ती है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? उसका बीज कृष्ण भगवान के द्वारा बनाया। और अब भगवान को बिना बताए अगर हमने उसे खा लिया या ले लिया तो हम क्या कहलाएंगे? चोर। अब आप देख लीजिए हमें से कितने लोग चोर हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो सात्विक हैं, हम तो आपकी पार्टी में भी हैं, आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम चोर कैसे हो सकते हैं? तो देखा जाए तो ये आम आदमी पार्टी बनाने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, वो भी तो सृष्टि की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना भूखा खाना खा रहे हैं, तो कोई भ्रष्टाचार से, जो खुद भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कैसे लड़ेंगे? वो तो माया के वशीभूत हैं, फंसे हुए हैं पूरी तरह से। प्रभुपाद जी जब इसमें आ रहा था रास्ते में तो एक लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये क्रो पार्टी कौओं की सेना है, जब कौए इकट्ठे होते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसे शांति, ऐसे शांति, ऐसे शांति, और शांति नहीं आती। इतने ज्यादा गर्वित हो जाते हैं लोग। एक बार प्रभुपाद बता रहे थे कि फ्रांस में प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे फ्रांस में, तो वहां पर एक कैसल था, किला, और उस किले के बाहर से निकले तो डिवोटीज ने कहा प्रभुपाद दिस इज नेपोलियंस कैसल, ये नेपोलियन का किला है, नेपोलियन बोनापार्ट जो बहुत बड़े लीडर हुए हैं, और वो क्या बोलते थे? तो प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बोली, वो बोलते थे फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस, नेपोलियन ही फ्रांस है और फ्रांस ही नेपोलियन है, मतलब नेपोलियन के बिना फ्रांस का कोई अस्तित्व नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? फ्रांस इज हेयर, कैसल इज हेयर, बट वेयर इज नेपोलियन? नेपोलियन नहीं है लेकिन किला भी है और फ्रांस भी है, लेकिन नेपोलियन कहाँ है? वो आए और चले गए। हम यही सोचते रहते हैं पूरा जीवन कि ये सब कुछ हमारे कारण हो रहा है, ये रजत प्रभु कहते हैं रजत इस फरीदाबाद, फरीदाबाद इस रजत, कुछ भी सोच सकते हैं। शाहरुख खान बोल देता है मुंबई इज बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम बिकॉज ऑफ मुंबई, ऐसे बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। जो व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर चलता है, वो अपने आप को भगवान के समान समझने लगता है, बिल्कुल गलत है। वो कौन है? चोर है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि से उठाकर चीजों को अपना बता रहा है, है ना। इवन हम देखें तो ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रही है कि नहीं घूम रही है हमारे इसमें? कोई ऑक्सीजन मास्क तो नहीं ले रहा है यहाँ पर? पैसे दे रहा है कोई ऑक्सीजन के? हाँ, फ्री में ले रहे हैं ना। कभी हमने भगवान को इसके लिए थैंक यू बोला? तो फिर कौन है हम? चोर। रोज भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, उनको सिखाया जाता है थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी वंडरफुल फूड, स्कूल में प्रेयर होती है ना, भगवान आज आपने हमें भोजन दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। भगवान आपने इतनी सुंदर हवा दे रखी है जिसके कारण मैं जीवित हूँ, वरना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। अपोलो हॉस्पिटल में अभी कोई एडमिट थे तो उनका कॉस्ट आता था 80,000 से 1,00,000 रुपये 1 घंटे ऑक्सीजन मास्क लगाने का, सिलेंडर चेंज होते थे तो 5 घंटे के 5,00,000 रुपये। हम कितने घंटे ऑक्सीजन लेते हैं दिन में? 24 घंटे, कितने रुपए हो गए? 24,00,000 देने को तैयार है? हाँ, जो नहीं है वो भगवान मांग भी नहीं रहे हैं। भगवान का नाम है क्या? भावग्राही जनार्दन। क्या नाम है? नियम आग्राही जनार्दन नहीं है। भगवान नियम को नहीं देखते, क्या नियम पालन किया, कैसे किया, किया कि नहीं किया, पैसे नहीं है तो भी दिया कि नहीं दिया, कृष्ण नहीं देखते। कृष्ण क्या देखते हैं? किस भाव से अर्पित किया। भावग्राही जनार्दन, तो भगवान को भाव से अर्पित करना चाहिए, है ना। इसीलिए अभी जो है भगवान चार युगों में आते हैं, अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो बताते हैं सतयुग के अंदर बद्रीनाथ है, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारकाधीश, और कलयुग में जगन्नाथ। जानते हैं आप जगन्नाथ जी को? ही नहीं जानते हैं? जय जगन्नाथ। नहीं जानते हैं? जय जगन्नाथ। तो हम जगन्नाथ जी जो है उनके कारण ये कलयुग का पूरे लोग जो है वो आनंद में जीवन जी रहे हैं। भावग्राही जनार्दन, जो भगवान है वो क्या करते हैं, देखिए कि जो इस चार धाम जो है, चारों युगों के ये चार धाम कहलाते हैं। कोई गया है में से चार धाम यात्रा पे, चारों धाम किए हो? तो इन चार धामों में बताया गया कि भगवान कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं। जो भगवान सतयुग में आते हैं बद्रीनाथ के रूप में, वहां पर जो आज बद्रीनाथ है यहाँ पर आप जाते हैं तो वहां भगवान किस रूप में क्या क्रिया करते हैं? भगवान ध्यान में, नर नारायण के रूप में भगवान वहां पर क्रिया करते हैं। क्या? ध्यान। भगवान ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? भावग्राही जनार्दन अहम भक्ता पराधीनो, भक्तों का ध्यान करते हैं। कौन से भक्त ने भोग लगाया, कौन से ने नहीं लगाया? जिसने लगाया वो पाप से मुक्त, जिसने नहीं लगाया वो पापी, वो फिर इस चक्र में भोगता रहेगा 84 लाख के। मैं बाद में क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तक हो जाए, टाइम नहीं है वैसा हमारे पास। तो वहां पर क्या है, भगवान ध्यान में है। फिर जब आप जाते हैं रामेश्वरम तो वहां पर क्या है, भगवान को स्नान, भगवान स्नान करते हैं मॉर्निंग, है ना, भगवान की ध्यान स्नान। और फिर द्वारका में क्या करते हैं भगवान? श्रृंगार। भगवान द्वारका में श्रृंगार करते हैं, इसलिए कहते हैं द्वारका देश में ऐश्वर्यपूर्ण भगवान होते हैं। एकदम मुकुट लगा रखा है, तलवार है भगवान के पास, राजाओं की ड्रेस है भगवान की, ये द्वारका देश है। और जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं भगवान? प्रसाद पाते हैं। वहां पर रोज इतना इतना प्रसाद बनता है, भोग लगाया जाता है वहां पर, खूब भोग लगाते हैं भगवान को। और वहां की जो भगवान की कृपा है वो देखने में साक्षात प्रकट होती है। आप में से कितने लोग पूरी गए हैं? सबको जाना चाहिए एक बार, कलयुग के साक्षात भगवान जगन्नाथ है। अगर आप जगन्नाथपुरी नहीं गए, सबको जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी की महिमा इतनी इतनी ज्यादा है कि वहां पर जो है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उससे भोग बनता है, और मिट्टी के बर्तनों का भोग जो है, रोज मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पूरी फैमिली है, और वही भोग मिट्टी के बर्तन बनाएगी, और रोज काउंटेड लोगों के लिए भोग बनेगा। जैसे मान लीजिए 10,000 भक्तों के लिए भोग बना, लेकिन दिन में 3 से 4 लाख लोग आते हैं, फिर भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सारा का सारा प्रसाद जो है वो भोग कौन बना रहे हैं? वहां के भक्त बना रहे हैं, ठीक है। और जो मिट्टी का बर्तन है वो रोज भोग लगने के बाद फोड़ दिया जाता है। रेल डेली इतने सारे बर्तन रोज वहीं के मंदिर के भक्त बनाते हैं, और देखने के लिए आता है वहां की महिमा में कि 8 मटकी लगाकर एक राधा रानी की, लक्ष्मी जी की रसोई है, बोलते हैं लक्ष्मी जी वहां पर खुद स्वयं भोजन बना भोग बनाती हैं। उनके 8 मटके रखे जाते हैं और फायर नीचे आग लगाई जाती है, और सबसे ऊपर की जो मटकी होती है वो सबसे पहले उसमें चावल गलते हैं, फिर 7 फिर 6 ऐसे करके होता है, उसमें खुद लक्ष्मी जी देते हैं। तो ये वहां पर इससे पता चलता है कि लक्ष्मी जी वहां पर साक्षात विराजमान है। पानी कभी भी वाटर सप्लाई का यूज नहीं होता है, पानी हमेशा कुएं से निकाला जाता है। जगन्नाथ जी का अलग कुआ है, बलदेव जी का अलग, सुभद्रा जी का अलग, और उन्हीं से एक परंपरागत फैमिली है जो कि कई सालों से, कई वर्षों से, कई पीढ़ियों से सेवा करती आ रही है। एक बर्तन बना रही है, एक चावल बना रही है, एक दाल बना रही है, एक पानी ला रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी फैमिली है। और पूरे काफी सारे लोग और सारे जो है इसमें से देखा जाए तो बहुत ही कम है जो ब्राह्मण है, सारे के सारे शूद्र परिवारों से है। क्योंकि भगवान ने जो है वो शूद्र जाति के लोगों को बोला था कि मेरी सेवा करें। तो एक बार रामानुजाचार्य जो है वो कहाँ से गुजर रहे थे, जगन्नाथपुरी से, अपने 1000 शिष्यों को लेके, जो गुरुजी होते हैं ना उनके शिष्य उनके साथ साथ चलते हैं, है ना। तो उनके साथ शिष्य थे, जब वो आए जगन्नाथपुरी तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नियम कानून नहीं है। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे तो वहां पर एकादशी का भी पालन नहीं किया जाता, एकादशी के नहीं होती है, मैं एकादशी के दिन ही चला गया था और उन्होंने क्या किया, जैसे जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके आए तो उन्होंने जय जगन्नाथ, मैंने बोला जय जगन्नाथ, वो बोला मैं तब से वो मैं ना चावल का कुछ, मैंने कहा एकादशी ब्रेक कर दी। तो मेरे साथ में भक्त लोग से मैंने पूछा कि प्रभु जी ये एकादशी टूट गई, अरे कोई बात नहीं जगन्नाथपुरी में सब चलता है। लेकिन महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उन्होंने कहा कि वैष्णवों को एकादशी का पालन करना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे पुरी में भी हो, लेकिन पुरी के लोगों के लिए कोई एकादशी नहीं है। वहां पर आप देखेंगे तो मंदिर की बैक साइड में एकादशी देवी को लॉक कर रखा है, ताले से बांध रखा है, एकादशी का कोई नियम पालन नहीं, सिर्फ प्रसादम 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 खाते रहो बस आनंद मग, क्योंकि भगवान तो भूखे नहीं रह सकते ना, एकादशी कर दे तो भगवान कैसे भूखे रहेंगे, इसलिए भगवान को वहां पर बहुत। तो वही रामानुजाचार्य ने जब देखा कि यहाँ पर तो कोई नियम कानून नहीं, एकादशी को प्रसाद खाते हैं मतलब अन्न खाते हैं और जो कुछ भी मन में आता है और झूठा भी खा लेते हैं, वहां पर झूठे का भी नहीं, जैसे हमारे होता है ना हमने प्रसाद खाया और इसमें से प्रभु जी ने खा लिया तो अपराध हो गया, प्रभु जी झूठा ले लिया या मैंने इनका झूठा ले लिया, वहां पर क्या है सारे के सारे भक्त बैठ के एक ही प्लेट में खाएंगे फिर भी वो उतना ही सर्वश्रेष्ठ बना रहेगा, किसी को झूठे का वो अपराध नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता जगन्नाथपुरी में, क्योंकि ये भगवान कौन है, भावग्राही जनार्दन है, भाव को भगवान ग्रहण करते हैं, यानी कहते हैं भाव के वश में है भगवान, भाव नहीं तो मंदिर मस्जिद दिखत है वीरान, अगर भाव नहीं है तो खाली मूर्ति खड़ी करने से कुछ नहीं होगा। हमारे घर में भगवान का हमने बहुत बढ़िया सा पेंटिंग लगा दिया लेकिन ठाकुर जी का ख्याल नहीं रखा, हमको खाने को भोग नहीं लगाया, अपना तो खाते हैं हम रस मलाई गोलगप्पा और भगवान को क्या देते हैं मिश्री और सौंफ, ज्यादातर घरों में देखा है आई आइए तो जी आई आइए हम गोपाल जी की सेवा करते हैं, ओ वेरी गुड, क्या खिलाते हैं गोपाल जी को, तू जी सुबह सुबह मिश्री और रात को दूध और बीच में सारा दिन भूखे भगवान भज गोपाल भजन करो और क्या है, भगवान भी भजन करेंगे हम भी, और खुद क्या खाते हैं टिक्की समोसे पता नहीं क्या क्या गोलगप्पे वो सब खाते हैं, रोड पे जा जाके मार्केट में चौमीन और मोमोज पिज्जा सब ऐसे ऐसे डिशेज खाते हैं बाहर, लेकिन भगवान को कुछ नहीं ना, जिस भगवान ने सब कुछ बनाया उसी की सृष्टि से लेकर खा रहे हैं और अपना आनंद में, लेकिन भगवान का याद नहीं है, तो ऐसे क्या भगवान कृपा करेंगे। हाँ क्योंकि घर में पिताजी हैं और पिताजी जो है वो सारी के सारा धन दे रहे हैं घर में बच्चे को, और बच्चा जो है वो फिफ्थ क्लास में पढ़ता है और उसको शौक लगा चलो थोड़ा सा घर में खाना बनाया जाए, और उसने खाना बनाया पापा के पैसे से ही, और पापा जब आए रात को कि बेटा आज क्या बनाया, वाह बना तो बहुत बढ़िया था, चौमीन थी छोले भटूरे थे और क्या था माता जी समोसे थे और सब मैंने खा लिया, वो रिप्लेट बाबा बस पड़ी अच्छा, और साथ में पैकेट भी डाल देते हैं हल्दीराम मेरे पैसे से खाया मुझे नहीं, अच्छा लगेगा उनको, अच्छा लगेगा किसी पिताजी को बच्चे खा ले और उनको ना पूछे, नहीं अच्छा लगेगा, भगवान के ही धन को इस्तेमाल करके हम खाए जा रहे हैं मन में जो आ रहा है, पाप तो चलो छोड़ो दूर, कम से कम एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए भगवान के लिए, घर में ठाकुर जी को रखा हुआ है, जो भी लोग इस्कॉन में आते हैं वो कृष्ण की पेंटिंग रख लेते हैं, वरना अनगिनत लोग हैं जिनको कृष्ण का रूप बड़ा सुंदर लगता है अपने घर में रख लेते हैं लेकिन उनको खिलाते पिलाते कुछ नहीं है, तो क्या होता है भगवान वहां से चले जाते हैं, फिर वो भगवान नहीं रहते, फिर वो पेंटिंग रह जाती है, भगवान अपने भिन्नांश रूप में रह जाते हैं, स्वांश रूप से चले जाते हैं, लेकिन जिसमें मान लीजिए पेंटिंग का रूप ही खराब सा हो काला सा हो एकदम, लेकिन भाव ऐसा हो कि दिन में हम भगवान को 8 बार भोग लगाएंगे तो वहां पर भगवान स्वांश रूप में प्रकट हो जाते हैं, चाहे प्राण प्रतिष्ठा करी हो या ना करी हो भगवान सेवा से प्रसन्न होते हैं, है ना। कुछ ड्यूटीज ऐसी होती है देखने में, आप जाकर देखेंगे मायापुर में या वृंदावन में, जिनको देखने में उनका इतना सुंदर रूप नहीं है लेकिन उनके अंदर से तेज जितना निकलता है लगता है कि इनकी सेवा होती है, क्योंकि भगवान खाते पीते हष्ट पुष्ट होते हैं ना, और जहाँ पर खिलाते पिलाते नहीं वहां से भगवान पलायन हो जाते, फिर वो एक पाषाण पत्थर रह जाता है, फिर वो मूर्ति भगवान की नहीं रहती क्योंकि भगवान उसमें से चले जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान रहें तो उनको हमें सदाचार के रूप से भोग लगाना चाहिए, भाव से भोग लगाना चाहिए। तो ऐसे ही जब रामचंद्र को देखा कि ये तो यहाँ पर शूद्र जाति के लोग भोग लगा रहे हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, एकादशी के दिन खा रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा, मजिस्ट्रेट को बोल दिया कि जी देखिए यहाँ का नियम जो है हम बदलेंगे, यहाँ से जितने भी शूद्र लोग हैं इनको निकाल दो, पांडे लोग जितने भी हैं सबको निकाल दो, सबको निकाल लिया और उनके 1000 शिष्यों ने कवर कर लिया और आराम से एक दिन भोग बनाने लग गए, भोग बनाया भगवान को लगाया, सब में बांट दिया, फिर दूसरे दिन बनाया। अब सारे पांडव लोग जितने भी थे, जितने परंपरागत सेवा करते आ रहे, उनको टेंशन हो गई, कह रहे अभी कैसे होगा, अब हम हमारी सेवा हमसे छीन ली गई है, अब हम कैसे अपना जीवन जिएंगे, हमारा जीवन तो सिर्फ जगन्नाथ थे, जगन्नाथ अब हम क्या करें। सबने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि जगन्नाथ अगर हमने आपको भोग नहीं लगाया तो हमें नींद नहीं आएगी, हम दो दिन से परेशान हैं। जगन्नाथ जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि जगन्नाथ ही कुछ कर सकते हैं, उनके बस की तो कुछ नहीं थी, क्योंकि रामानुजाचार्य एक बहुत ही वरिष्ठ ब्राह्मण थे, एक आचार्य थे, एक परंपरा के आचार्य थे, तो उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, आके बस गए और अपना वहां पर सब कुछ घेर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, रात को उनके सारे डिसाइपल सेवा करके सोए, और जब सुबह उठते हैं मंगला आरती के लिए तो देखते हैं अरे हम लोग श्रीरंगम में कैसे आ रहे हैं, हम तो सोए पुरी में थे, देखा तो सामने वहां पे रंगनाथ जी का मंदिर है। तो फिर रामानुजाचार्य के भक्त थे बहुत वरिष्ठ, तो उनको समझ में आ गया कि हमने जो है उनकी सेवा छीन ली, इसके कारणवश जगन्नाथ जी ने हमको मायापुरी से उठाकर श्रीरंगम में वापस भेज दिया, हजार शिष्यों को उठा के रातों रात ट्रांसफर कर दिया भगवान कुरियर की तरह। ये है भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव ग्रहण करते हैं, और भगवान के प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रसाद होता है जब हम बाहर खाएंगे तो उसमें कॉन्शियसनेस चेतना जो होती है, जो व्यक्ति बनाता है उसकी चेतना भी उस खाने में आती है। मान लीजिए गोलगप्पे वाले के मन में चल रहा हो आज तो मैं मर्डर कर दूंगा, है ना, आज मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हूँ, मर्डर कर दूंगा किसी का, और वहीं आप पहुंच गए, प्रभु जी लगाना जरा क्या बोलते प्लेट, एक प्लेट लगाना प्रभु जी गोलगप्पे की, और आपने प्लेट ली गोलगप्पे खाने शुरू किए, आपके मन में मर्डर कर दूँ किसका, कर दूँ मर्डर कर दूँ, कॉन्शियसनेस। और कई बार टेस्टेड है, बहुत सारे भक्तों ने प्रयास किया है, टेस्ट किया हुआ है कि अगर वो भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोग और भगवान को ऑफर्ड भोग खाते हैं तो उनकी चेतना सत्वगुणी होती है, लेकिन जब वो भगवान के भक्तों के द्वारा ना बनाया हुआ भोग भले ही भोग लगा के खाएं तो उनकी चेतना रजोगुणी होती है। अगर वो भगवान के भक्तों के द्वारा ना बनाया गया भोग और ऑफर भी ना किया गया खाना खाते हैं तो फिर वो क्या कहलाता है, तमोगुणी खाना। तो हमको चूज करना है कि अगर हमें सत्वगुण में रहना है, रजोगुण में रहना है या तमोगुण में रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु जी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मेरे शरीर से जाता ही नहीं है, काम वासना मेरे अंदर जब समी हुई है, क्रोध आता है प्रभु जी क्या करें, कैसे कंट्रोल करें, गीता भी पढ़ते हैं माला भी जपते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है प्रसाद। अगर हम प्रसाद को सही रूप से नहीं खाएंगे, भक्तों के द्वारा बनाया गया और ऑफर किया हुआ, तब तक हमारी चेतना नहीं शुद्ध होने वाली, और ये भी एक दिन की क्रिया नहीं है, रेगुलर रेगुलर जब हम इसे करते रहेंगे तब, है ना। और पॉइजन प्रभु जी खाते हैं रोज खाते हैं, एक दिन बाहर का खा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर प्रभु जी, लेकिन पॉइजन अगर एक बार भी खाया जाए तो सारे जिंदगी भर के दूध याद दिला देता है, खत्म कर देता है जीवन को, है ना। तो ये है, एक बार भी आपने खाया तो गड़बड़, हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने जीवन में ना, कि अगर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद। इवन देखा जाए तो डिटेल में तो ये बिस्किट आते हैं ना, बिस्किट बनते हैं बाजार से, ये सब भी नहीं खाने चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं टिंड फूड जो बहुत दिन से पैकेज करके रखे गए हैं ना मार्केट के अंदर, वो भी नहीं खाने चाहिए हमको, है ना। पॉलीथिन में नमकीन भुजिया ये वो पता नहीं क्या क्या आता है मार्केट में, फिर बाहर से डोसा बनवा के लिया तो मुझे बिना अनियन गार्लिक का भोग लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, रजोगुण ये फर्क पड़ता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, हमारे जान पहचान के बहुत अच्छे पंडित हैं, सालों से समोसे बनाते हैं, इसमें तो अनियन गार्लिक नहीं, लाए भगवान को खिला दिया प्रभु जी, तो क्या फर्क, तो आपने किस लिए खिलाया भगवान को, हाँ आप समोसा खाना चाहते थे इसलिए आपने ठाकुर जी को खिलाया, अगर वो खाना चाहते थे और फिर आपने खिलाया तो फिर कोई सोला मला वाला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो शूद्र जाति के हाथ से भी खा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्यों खिला रहे हैं, आज भगवान को क्या खिलाया जाए, क्या खिलाया जाए, तो फिर सोचते हैं आज क्या खाने का मन है, गुलाब जामुन मंगवा लेते हैं प्रभु, आज गुलाब जामुन हो जाए प्रभु जी, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हैं, 10 मिनट इंतजार नहीं होता, बच्चे भी बोल रहे थे पापा जल्दी से पर्दा हटाओ कब खोलोगे गर्म ठंडे हो जाएंगे, घर वाले भी बोलते हैं अरे रोटी उठा लो ठंडी हो जाएगी, हलवा उठा लो ठंडा, ठाकुर जी खाए ना खाए हमारा पेट बढ़िया भरना चाहिए, विपरीत अर्थक चल रहे हैं बिल्कुल, शास्त्र के अनुसार बताया गया कर्म नहीं करेंगे तो कभी भी सत्वगुण में नहीं रहेंगे, और सत्वगुण में रहना चाहते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है प्रसाद। प्रसाद की फुल फॉर्म जानते हैं क्या होती है, कोई बता सकते हैं, प्रसाद प्र से प्रभु, स से साक्षात और द से दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन, अगर कोई करना चाहता है तो प्रसाद, श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन जब स्टैब्लिश किया 1965 में जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो क्या वहां पर कोई था जो जप करता था? था ऑलरेडी ड्रम्स मतलब मृदंग बजाने वाले कोई थे? हरे कृष्ण महामंत्र जपने वाले थे? नहीं थे। फिर क्यों करने लग गए? फिलॉसफी समझ में आ गई? दो दिन में कैसे फिलॉसफी समझ में आ गई? एक साल में फिलॉसफी समझ में आ गई कि 1966 में प्रभुपाद के पास 40 डिसाइपल्स हो गए और प्रभुपाद ने इस्कॉन बना दिया। एक साल में फिलॉसफी, आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे भक्त लोग? आप कितने साल से आ रहे हो? 5 ईयर्स। फिलॉसफी समझ में आ गई? नहीं आई। आपको आ गई? नहीं आई। तो कैसे आप भक्त बने? आपकी चेतना कैसे बदली? अगर फिलॉसफी समझ में नहीं आई तो मेंटली तो हम भक्त नहीं बने। कहां से बने? पेट से भक्त बने, प्रसाद खाकर। प्रसाद से जो होता है हमारी चेतना शुद्ध होती है। इसीलिए बोलते हैं हमें भक्तों के द्वारा बनाया गया भोग ही खाना चाहिए, भगवान को लगाकर ही खाना चाहिए, वरना तो हम अन्यथा चोर है ना। चोर बनेंगे तो तमोगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, सत्वगुण में कभी आएंगे नहीं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सत्वगुण को भी जप करना पड़ेगा, शुद्ध तत्व में जाना पड़ता है, और वो शुद्ध तत्व इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता। इसलिए जो भी खाएं वो भगवान को भोग लगाने का। और आप क्या मान लीजिए शिव जी, गणेश जी, जितने भी आप डेमी गॉड्स के नाम जानते हैं, वो सारे के सारे भगवान का उच्चिष्ट बचा हुआ भोग खाने के लिए ललायत रहते हैं। क्या बोलते हैं वो? एक बार की कथा आती है कि एक बार शिव जी जो थे वो बैठे थे ध्यान मग्न, अपने ध्यान में ऐसे बैठे रहते हैं। और जानते हैं शिव जी ध्यान में क्या बोलते हैं? जानते हैं क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी जो है वो वैष्णवों में परम भक्त हैं, है ना। बोला जाता है वैष्णव नाम यथा शंभू, वैष्णवों में अगर कोई एक है तो वो शंभू है। शंभू मतलब शिव जी वैष्णवों में परम है। वो रोज भागवत नाम का जप करते हैं और भागवतम का पाठ करते हैं, है ना। नित्यम भागवत सेवा जो हम बोलते हैं वो शिव जी रेगुलर क्लास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शिव जी को जल चढ़ाकर और शिव लोग पहुंच गया तो वहां क्या देखेगा कि ऐसे एक क्लास लगी हुई है, शिव जी व्यास आसन पे बैठे हैं और भागवत कथा चल रही है। फिर फंस जाएगा, कहेगा इतना सब करके यहाँ आया, इससे अच्छा तो भजन ही कर लेता, सीधा भजन ध्यान चला जाता। क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, यमराज परम वैष्णव है, गणेश जी परम वैष्णव, ये सारे वैष्णव है। और वैष्णव जो है वो उनका एक ही कर्तव्य होता है, विष्णु की आराधना करना, कृष्ण की आराधना करना, वो किसी और की नहीं करते। तो उन्होंने एक बार देखा कि नारद मुनि जो कि ब्रह्मा से जिनकी उत्पत्ति हुई है, नारद शिव जी ये दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। तो उनके सर्वप्रथम जो पुत्र हैं वो कौन है? चतुर कुमार, नारद, शिव, ये सारे उनके पुत्र हैं, प्रजापति। तो क्या किया नारद जी को भगवान ने अपना उचिष्ट दिया प्रसाद, है ना। और नारद जी ने जैसे खाया तो नारद जी जो है वो झूमने लग गए। इतना सा भगवान भोग खा रहे थे, नारद जी पहुंच गए, बोले भगवान वैकुंठ में आप अकेले आनंद लेते हो, कुछ हमको भी दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए नारद? बोले आपका भोग, बचा हुआ आपको प्रसाद चाहिए मुझे। तो भगवान ने अपने मुख से निकालकर नारद जी को दे दिया। डायरेक्ट जब भगवान का निकाला हुआ मुख से उन्होंने खाया तो क्या होगी स्थिति? ये स्थिति नहीं होगी हमारे जैसी, मैसेज भेज रहे प्रभु जी आओगे, ठंड बहुत है प्रभु जी, मंगला आरती सोचेंगे प्रभु जी, कीर्तन प्रभु जी आज माला, ये भोग की स्थिति नहीं है। प्रसाद खाने वाले की स्थिति कैसी होती है? रोमांच कम प्राशु, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए नारद जी के, उनके पैर जमीन पे नहीं रख रहे थे, वो उछले जा रहे थे हवा में 8-8, 9-9 फीट और गोल गोल चक्कर काट रहे थे, क्योंकि उनके अंदर प्रसाद जैसे किसी को एक इंजेक्शन लगा दिया जाए वैक्सीनेशन, ऐसे प्रसाद उनके शरीर में रिएक्ट कर रहा था। और वो कूद रहे थे, नाच रहे थे, उछल रहे थे, एकदम पूरे शरीर से रोशनी निकल रही थी। तो शिव जी के पास से जब गुजरे, शिव जी ने कहा भाई, क्योंकि उनके ब्रदर है, भाई है, तो भाई ये क्या हो गया तुमको, अचानक से तुम इतना तेज कैसे प्रकट कर रहे हो जैसे तुम विष्णु बन गए हो? तो उन्होंने बोला विष्णु नहीं बना हूं मैं, विष्णु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद खा के आ रहा हूं, क्योंकि तो बिजली का करंट जा रहा हो उसे पकड़ लो तो आप भी बिजली बन जाओगे, एक्सपीरियंस कर लो बिजली है। तो बिजली बन जाता है इसकी, उसके अंदर भी बिजली आ जाती है 440 वोल्ट पूरी की पूरी, उसके बाल खड़े हो जाते हैं ना। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो बिजली के अंदर आ रही है। ऐसे प्रसाद खा के उनके शरीर में भी ऐसे पूरा रोंगटे खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए, नाच रहे हैं खुशी से इधर उधर। शिव जी ने कहा ये तो गलत बात है, तुमने अकेले अकेले इसको ग्रहण कर लिया, अपने भाई की याद भी नहीं, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। बोले देखो अब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो शिव जी ने देखा तो उनके यहाँ पर भोग लगा हुआ, प्रसाद लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर। उन्होंने क्या हुआ, इधर आओ, इधर इधर। और पास मिला, पास मिला, ऐसे निकाला और शिव जी ने मुंह में डाल दिया। कैसे शिव जी ने डाला? तो जो बोलते हैं ना तांडव, तो भगवान शिव जो है तांडव कब करते हैं पता है? लोग सोचते हैं जब विनाश करते हैं तब तांडव करते हैं। नहीं, भगवान तांडव तब करते हैं जब वो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का। जिस दिन महाप्रसाद ग्रहण कर लेते हैं डायरेक्ट भगवान का, फिर वो तांडव करते हैं, खुशी से नाचते हैं, तो लोगों को लगता है प्रलय हो रही, क्योंकि वो बुद्ध नहीं रहती ना, प्रसाद खा के नशे में आ जाता व्यक्ति, वाह क्या प्रसाद खाया आज। और फिर वो नाचने लग गए, एकदम नाच रहे नाच रहे, पूरी पृथ्वी हिलने लग गई। तो फिर लक्ष्मी जी, पार्वती जी आई और पूछा कि भोलेनाथ आपने क्या ग्रहण कर लिया जिससे आपके जमीन पर पांव नहीं टिक रहे हैं, आप कैलाश को तोड़े चले जा रहे हैं, नाच रहे हैं बुरी तरह से, क्या हो गया, इतने खुश हैं, आनंद मग्न हैं। तो उन्होंने बोला मैंने आज विष्णु प्रसाद ग्रहण किया है, भगवान कृष्ण का भोग ग्रहण कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो पार्वती ने कहा अरे ये कैसे पति हो है, खुद खा लिया और मेरा ख्याल नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कि अरे गलती हो गई, लेकिन इतना ही था, नारद तो मुझे दे नहीं रहे थे, मैंने तो जबरदस्ती उनके मुख से निकला हुआ अंश थोड़ा सा मुख में डाला और मुझे आनंद प्राप्त हो गया। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया, बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं देते हैं तो मैं डायरेक्ट जाती हूँ कहाँ, वैकुंठ धाम, और मैं जाकर बोलती हूँ भगवान से कि भगवान सबको दिया सब आनंद में, मुझे भी तो आनंद लेने दीजिए। तो मैं भी जाती हूँ। जब वहाँ पहुँची तो भगवान ने कहा कि अब तो देखो पार्वती सारा कुछ फिनिश हो चुका है और अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, कल आना। बोले अब रोज रोज का चक्कर नहीं है, मुझे पति की भी सेवा करनी होती, मैं रोज रोज नहीं आ सकती हूँ, भगवान आपने मेरे साथ गलत किया है, मैं क्रोधित हूँ। भगवान बोले क्रोधित मत हो, भक्त को क्रोधित नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए मैं एक ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि तुम्हें रोज भगवान का भोग मिलेगा। बोले कैसे? बोले बस अब कुछ ही समय बाद मैं कलयुग में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होने वाला हूँ और तुम प्रकट होगी विमला देवी के नाम से। किस नाम से? विमला देवी। तो अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो भगवान का मंदिर सेंटर में है, बहुत विशाल मंदिर, और उनके इधर लेफ्ट साइड में एक मंदिर है उसका नाम है विमला देवी मंदिर, और राइट हैंड साइड पे लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी भोग बनाती हैं, जगन्नाथ जी खाते हैं, और खाने के बाद सर्वप्रथम थाली किसको दी जाती है? विमला देवी जी को। डेली पार्वती जी वहाँ पे भोग खाती हैं और उसके बाद फिर सारे जगन्नाथपुरी में भक्तों को बढ़ता है। तो देखिए भगवान की प्रसाद पाने की लालसा से कितना अरेंजमेंट भगवान करते हैं। लोग बोलते हैं प्रभु जी हमें इस कौन में इतना टाइम हो गया, भगवान का प्रसाद हम तो प्रयास करते हैं लेकिन अरेंज नहीं हो पाता। अरेंज होगा लेकिन कब? जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, लालसा होगी प्रसाद को पाने की, कि प्रभु जी जिएंगे जिएंगे, मरेंगे मरेंगे, लेकिन खाएंगे तो सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे। जब ऐसी दृढ़ निश्चय हो जाएगा तब फिर भगवान अरेंज करते हैं हमको चलते लेने के लिए। छोटा बच्चा होता है उसको कभी ऐसा करते हैं, कभी ठेले से दूध खरीद के पिला दिया, कभी ढाबे से खरीद के पिला दिया, 6 महीने का बच्चा हो क्या करते हैं, माँ ना उसका पैक करके चलती है दूध, है कि नहीं माता जी? छोटे बच्चों का दूध पैक करके चलते हैं कि बाहर मिले ना मिले, अच्छा मिले ना मिले, फट ना जाए, बड़ा ख्याल रखते हैं। और फिर बच्चे को खैर कोई टेंशन होती है, वो तो डिपेंडेंट होता है दूध, भूख लगी तो दूध दूध, डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो भगवान अपने आप प्रसाद अरेंज करते हैं, बिल्कुल अपने आप, बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें भगवान पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। वरना हमारी चेतना इतनी खराब हो जाएगी बाहर का खाना खा के कि हमसे हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करेंगे तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं प्रभु जी हमारे ना दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, कभी किसी का नुकसान किया था वो याद आता है, किसी को गाली दी थी वो याद आती है, किसी ने हमको कुछ बोला था वो याद आता है, माला करते भगवान का नाम याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम विभिन्न विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, जैसा करें संग वैसा बने ढंग। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपका ढंग बदल जाता है, जैसा आप प्रसाद खाते हैं वैसा आपका चेतना बदल जाती है, आप बोलने लग जाएंगे भगवत कथा। भगवत कथा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो मैंने जैसे बताया तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बनाई, क्या? रसगुल्ले, रसगुल्ले थे ना जो, नहीं गुलाब जामुन ब्लैक कलर के, इस्कॉन बुलेट्स, यस इस्कॉन की गोलियां, रसगुल्ले थे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन ब्लैक कलर के गुलाब जामुन बनाते थे प्रभुपाद डेली अपने हाथों से। और हिप्पी लोग तो थे अंग्रेज, वो जो भगवत नाम के बारे में जानते नहीं, क्राइस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, भगवान से कोसों दूर हैं, उनको प्रभुपाद बुलाते थे प्यार से और कहते थे ये लो आपके लिए क्या है, ये कृष्ण प्रसाद, भगवान को भोग लगाते थे। अब सोचिए श्री प्रभुपाद जैसा शुद्ध वैष्णव अपने हाथ से भोग बना रहा है भगवान को, और उसके बाद फिर निकाल के भगवान का भोग अर्पित करा हुआ भक्तों को दे रहा है, तो क्या होगा? उसकी चेतना सत्वगुण में रहेगी नहीं? अभी जैसा शिव जी का हलवा नारद जी का हुआ, वैसे ही भक्तों का हुआ। हिप्पी क्या करने लग गए थे? अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने देखा है प्रभुपाद के वीडियोस कभी यहाँ पर चलाने चाहिए थर्सडे को ना, आधे घंटे कीर्तन की जगह यहाँ वीडियोस चलाने चाहिए मॉनिटर में। प्रभुपाद जी के वीडियोस देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, लाखों की पब्लिक चल रही है अमेरिका में प्रभुपाद जी के पीछे चैंट करती है, हरे कृष्णा, आप नाच रहे हैं। क्या खाकर? फिलॉसफी नहीं, प्रसाद। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट फिलॉसफी बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। हर एक व्यक्ति फिलॉसफी जो है, दर्शन जो है, उसको डाइजेस्ट हजम नहीं कर सकता, लेकिन जो है वो प्रसाद को हजम कर सकता है ना। इसीलिए सर्वप्रथम इस्कॉन में बताया गया आप प्रसाद बांटिए। हम जो है देखा जाए तो हम जो है ओरिजिनली भक्त हैं, है ना, हम ओरिजिनली भक्त हैं सबके सब, जो माला कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं वो सब भक्त हैं। क्यों? जैसे कि रात को जब हम सोते हैं तो हम कौन होते हैं? कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वो इंजीनियर है, सुबह 12 रात को मान लीजिए 10-11 बजे वो सोए और वो इंजीनियर थे, और सुबह 6 बजे जब उठाया तो क्या डॉक्टर बनेंगे? है किसी के इंजीनियर है यहाँ पर? कोई डॉक्टर है? कोई इंजीनियर है? कोई आप रात को सोते हैं तो आप इंजीनियर होते हैं? इंजीनियर होते हैं ना रात को जब सोते हैं, सोने से पहले इंजीनियर। आपको कोई पूछा इंजीनियर तो आपने बोला ना हाँ, जब सो के सो जाते हैं तब आप इंजीनियर होते हैं, जब सो के उठते हैं तो फिर इंजीनियर होते हैं। इसका मतलब सोने के दौरान इंजीनियर नहीं थे, ठीक है? ऐसे ही हम हैं जो है भगवान के धाम से जब आए तो हम भक्त थे, अभी हम सो रहे हैं इसलिए हम भक्त नहीं है। जिस दिन हम उठ जाएंगे उस दिन हम भक्त हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने इसका नाम दिया ऐसे अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। जागो जीव, जागो जीव, जागो। गौरा चांदर बोले, गौर चांदर बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु कि जीव जागो। जागो किससे? नींद से नहीं जागो, अलार्म क्लॉक नहीं है भजन का नाम जीव जागो। लोग अलार्म क्लॉक में लगा देते हैं जीव जागो गौरा चांदर बोले, और ना सोचते हैं अलार्म क्लॉक है, अलार्म क्लॉक नहीं है। और वो सोते में से नहीं उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं जागो, इस माया रूपी जंजाल को छोड़ो और जागो, तुम कहां कृष्ण चेतना की ओर जागो, भागो वापस भगवान के भक्त बन जाओ। बनने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है, बस जागना है। तो जागने को तैयार नहीं है, नींद में जब सोते हैं ना सर्दियों में 3 बजे उठाओ प्रभु जी मंगला आरती चलो चलो ऐसे बोलते हैं, उठने को तैयार नहीं है। तो हम भक्त लोग आते हैं कि प्रभु जी माला करिए कृष्ण भावना भवित हो जाइए, नहीं नहीं अभी नहीं, क्योंकि 4 माला का टाइम मिलता है, परिस्थितियों में फंसे ग्रस्त के जंजाल में है, जाल में है। जानते हैं कि जाल में कोई जानवर है जंगल में और वो जाल में फंस जाए तो उसका पहला कर्तव्य क्या होगा? वो क्या चाहेगा? कोई काट दे इसको फटाफट। चिड़िया जो होती है अगर जाल में फंस जाए तो क्या करती है? वो उड़ती है इधर उधर, कूदती है कि कोई काट दे इसको, रस्सी से टकराएगी, किसी गाय को बांध दो आप, वो क्या करेगी खींचेगी ऐसे ऐसे करके टूट जाए। लेकिन हम ऐसे हैं, इतने बद्ध हैं कि हमें पता है हम जाल में, ग्रस्त जाल में फंसे हुए हैं, और काटने का सॉल्यूशन भी मालूम है फिर भी काटने को तैयार नहीं, फिर बस कह देते हैं जाल के अंदर से ना, मान लीजिए जाल में बैठे हुए हैं तो कुछ काट दे, नहीं जाल में समझी जाए। काटने का तुरंत तरीका क्या है? भक्तों का संग करना है, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ABCD जानते हैं आप भक्ति की ABCD, ए फॉर हाँ भक्तों का संग, बी फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवदगीता रीडिंग भागवतम रीडिंग भागवतम हियरिंग सब बी से है, बुक रीडिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन बी, सी फॉर चैंटिंग क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और डी से डाइट प्रसादम। प्रसादम, प्रसादम के बिना ABCD पूरी नहीं होती प्रभु जी। और ई फॉर बस बोले प्रभु जी अभी तो पढ़ाई नहीं, क्लास में ज्वाइन नहीं, हाँ ABCD आता है आज, आज आपको आगे पढ़ाते हैं। ई फॉर एकादशी फास्टिंग है कि नहीं है? ई फॉर एकादशी, एकादशी रखनी चाहिए ना, एकादशी नहीं रखते वो अन्न खाते हैं, और अन्न खाते हैं तो फिर वो नरक में जाते हैं। जो अन्न खाएगा एकादशी के दिन वो नरक का भागीदार होगा। भगवान को बहुत क्रोध आता है जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। हमें एकादशी रखनी चाहिए। और एफ फॉर फास्टिंग, फास्टिंग ऑन द वैष्णव अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, एफ फॉर फास्टिंग। ऐसे पूरी रेड तक है, पूरी पढ़नी चाहिए आपको, अपग्रेडेड हो जाइए फटाफट वैष्णव संप्रदाय के अंदर। एक चार्ट पेपर ले लीजिए एबीसीडी का, बच्चे हैरान हो जाएंगे, पापा ये क्या हुआ फिर से एबीसीडी पढ़ने लग गए। पढ़ना चाहिए, बोलिए ये आध्यात्मिक एबीसीडी है। हम सब हो सकता है कि बैंक बैलेंस से अमीर हो, लेकिन भक्ति में हम बहुत निर्धन है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। और जब हम जाएंगे मृत्यु उपरांत तो हमारे को करेंसी चेक करी जाएगी, कौन सी, हरि नाम, कितना हमने आध्यात्मिक धन कमाया है। आप मान लीजिए यहाँ पर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो अमेरिका चला जाए और उसको चेंज करेंसी चेंज करने का आइडिया ना हो, कैसे चेंज करते हैं, सोचिए मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए है, मैं अमेरिका में आनंद में रहूंगा, क्या रह पाएगा, क्यों जी डॉलर्स नहीं है उसके पास, जापान चला जाए रह पाएगा, चला जाएगा, सोचिए कह रहेगा जापान में चला जाएगा कैसे, हाँ क्या नहीं है, कौन सी करेंसी नहीं है, येन नहीं है उसके पास, यूरोप चला जाए तो यूरो नहीं है उसके पास, तो कैसे रहेगा, और वैकुंठधाम चला जाए तो उसका नाम नहीं है, आध्यात्मिक धन नहीं है, तो ये 1 करोड़ रुपया का कोई फायदा नहीं है। और आज दिन हम क्या कमाना चाहते हैं, 1 करोड़, कैसे भी करके करोड़पति तक पहुंच जाऊं। आधा अमिताभ बच्चन ने खत्म कर दिया, कौन मिले 1 करोड़पति का, अब सब बनना चाहते हैं करोड़पति, बोले 80 लाख हो गए, पूरी बस 20 लाख और हो जाए 1 करोड़पति। करोड़पति बनने की दौड़ में लोग भाग रहे हैं, लेकिन हरि नाम का धन कमाना नहीं चाहते। अगर हरि नाम का धन नहीं कमाएंगे तो सब बेकार रह जाएगा, है ना। हरि भजन जो है वो सर्वश्रेष्ठ धन है संसार का, ठीक है। तो भगवान का भोग लगाना चाहिए। एक भक्त थे, उनका नाम था रामा भगत, क्या नाम था, रामा भगत, बहुत ही भावपूर्ण भक्त थे, लेकिन खाते बहुत थे, खाते बहुत थे, उनको बहुत प्रसाद खाने की आदत थी, बहुत ज्यादा। तो कितना खाते थे आप जानना चाहते हैं, रोज तकरीबन 1.5 किलो चावल, रोज 1.5 किलो चावल खाते थे वो। तो भगवान जो है उनके परिवार वाले थे और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, लेकिन भक्त बहुत थे। परिवार के लोगों ने कहा, 5 भाई थे, कि देखो तुम तो पूरे जड़ बुद्धि हो, जैसे जड़ भरत था, एक काम करो तुम यहाँ से जाओ, तुम हमारे से तो पलोगे नहीं हो, तुम्हें पाल सकते हैं कौन, ये जो मंदिर होते हैं मंदिर पाल सकते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर, लेकिन उस समय इस्कॉन मंदिर नहीं था, पूर्व मतलब पुरानी समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि आप मंदिर चले जाओ, मंदिर में जो पुजारी है वो तुमको पाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भंडारा होता है, तो डेली तुमको 1.5 किलो भोग खाना खिलाते हैं। तो आए जब वो अपने गुरु जी के पास में, पुजारी के पास, पुजारी जो थे बहुत बड़े आचार्य थे, तो उनको बोले कि देखिए मेरे को घर वालों ने निकाल दिया है। तो बोले अच्छा क्या करते हो, कह रहे जी करता तो कुछ नहीं हो, बोले भगवान की भक्ति करना जानते हो, कह रहा थोड़ा बहुत श्रद्धा है राम जी के ऊपर, राम जी के ऊपर, और वो भी राम जी को मानते थे, मंत्र जपते हो, कह रहे नहीं, कह रहे ठीक है चाहिए क्या, बोले घर वालों ने निकाल दिया, डेली 1.5 किलो खाना खाता हूँ, घर में देते नहीं है, कहते हैं आप मंदिर जाके खाओ, ठीक है हम आपको देंगे 1.5 किलो प्रसाद देंगे खाने के लिए पेट भर के, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको राम नाम जपना पड़ेगा। ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है, राम नाम बैठा बैठा जपता रहूंगा, जब भूख लगेगी तो खाऊंगा, ठीक है 1.5 किलो हम तुम्हें दे देंगे। कह रहे 1.5 किलो एक टाइम का है, 3 टाइम खाता हूँ, अरे अच्छा ये तो 4.5 किलो हो गया, अरे अच्छा तो बहुत दिक्कत हो गई हो तो फिर पुजारी जी ने सोचा ठीक है कोई बात नहीं 4.5 किलो भी देंगे। उन्होंने सोचा कोई भक्त तो बन रहा है और राम राम करेगा सारा दिन बैठ, कह रहे हिलना नहीं यहाँ से, और जो सेवा कर वो सेवा करनी, हाँ हाँ वो सेवा भी करूंगा, जो सेवा देंगे सेवा, और राम नाम का जप करूंगा और खूब प्रसाद खाऊंगा, ठीक है डन, रह जाओ, रह गए ब्रह्मचारी बन गए, कपड़े भी चेंज हो गए, सैफरन कपड़े हो गए और रह गए। फिर एक दिन जो थे एकादशी का दिन आया, कौन सा दिन, हाँ अभी तो रामा भगत से तो रहा नहीं जाता था बिना प्रसाद के, तो उन्होंने बोला कि देखिए पुजारी जी आचार्य जी मुझे तो आप भोजन दे दीजिए क्योंकि मैं एकादशी नहीं करता। क्या बात करते हो, एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो नर्क को जाता है, इतना भजन किया सब बेकार हो जाएगा, एकादशी को व्रत रखो। कह रहे जी आप रखो, आपके भक्त रखें, सब भगवान रखें, मैं नहीं रख सकता, मुझे तो भोजन चाहिए। कह रहे ठीक है, कह रहे वरना मैं यही प्राण त्याग दूंगा। कह रहे काम करो कि तुम आज ही दशमी के दिन, एक दिन पहले एकादशी से, क्या करो तुम बहुत सारा भोजन चावल इकट्ठा करो और दूर चले जाओ जंगल में, वहां लकड़ियां इकट्ठी करना और भोजन बनाना, भगवान को भोग लगाना, खीर खाना, वरना क्या खाना, पाप खाओगे। क्या खाओगे? हाँ, तो भगवान को भोग लगाना और फिर कहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और जाने लगे तो उन्होंने कहा राम जी के फोटो है, भगवान कैसे खाएंगे? अरे मानसिक नहीं नहीं नहीं, एक फोटो ले जाओ। तो उन्होंने राम सीता लक्ष्मण हनुमान का एक फोटो ले लिया, कहा ये ले जाओ। तो उन्होंने बढ़िया सा वहाँ पर पेड़ के पास लगा दिया राम जी का फोटो, और बैठ गए सुबह सुबह बना के अपना 5 किलो चावल दाल बना लिए उन्होंने, और फिर भगवान को भोग के लिए ऑफर कर दिया और राम नाम का जप करने बैठ गए। 1-1.5 घंटे तक जप करते रहे, जप में भूल गए भोग लग रहा है। फिर देखा आगे तो भगवान ने तो उसमें से कुछ खाए, तो कुछ नहीं खाया तो उनको बहुत टेंशन हो गई कि भगवान आप खाओगे नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, और मैं भूखा रह गया तो मैं मर जाऊंगा। चावल होने के बाद भी कोई व्यक्ति मर जाए आपको अच्छा लगेगा? सामने प्रसाद रखा होकर मर जाए अच्छा लगेगा? ये बोल बोल के भगवान को बार बार दुहाई देने लगा कि भगवान आ जाइए, आप भोग लगाइए, भगवान आप भोग लगाइए। तो भगवान 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो जब करते रहे, राम 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 करते रहे, और भगवान आए नहीं। भगवान नहीं आए तो चिंतित हो गए। रात का समय हो गया, रात के 8 बज गए, सुबह से भूखा व्यक्ति एकदम पीड़ा होने लग गई, शरीर एकदम शिथिल हो गया, गिरने लगे, आंसू निकलने लग गए। अरे आप भगवान में मर जाऊंगा, कोई भक्त शरीर छोड़ दे तुमको अच्छा लगेगा, तुम क्या अनुग्रहण नहीं कर सकते हो? तो भगवान के लिए तो कोई नियम नहीं, भगवान तो त्रिगुणातीत है ना, तीनों गुणों से पार है। तो भगवान आए, रामचंद्र जी को आना पड़ा, और भगवान आए और भगवान ने प्रसाद खाया। जब खाया तो उसने देखा भगवान तो 1.5 किलो 2 किलो खाए जा रहे हैं, तो भगवान तो जगन्नाथ है, भगवान तो सारा अन्न खा जाते हैं, तो वो खा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए, अरे भैया इतने लिए बुलाया था भोग लगाने के लिए, सारा ही खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा? तो उन्होंने रोक दिया। तो ऐसे अगर हम भी अपने घर में भोग लगाते हैं और भगवान नहीं आए, अगर भगवान खाने लग जाए तो हमें से कितने लोग भोग लगाएंगे? भगवान नहीं खाते हम ये जानते हैं, तब भी हम भोग नहीं लगाते, और भगवान खाने लग जाए तो सोचेंगे 5 मेंबर तो थे, एक और जुड़ गया। ऐसा हमारा हाँ फैमिली मेंबर बढ़ गया, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, सबके घर में एक ठाकुर जी उत्पन्न हो जाएंगे। तो नहीं जाते हैं लोग, जब जानते हैं तब भी भोग नहीं लगाते हैं। तो उसने बहुत भाव से भगवान को भोग लगाया, भगवान ने खाया। उसके बाद वो वापिस गया तो जाकर तेज उसके शरीर से निकल रहा था, क्योंकि उसने भगवान राम का डायरेक्ट प्रसाद ग्रहण किया। जब आचार्य जी को जाकर बोला तो आचार्य जी बोले वाह कैसी रही कादंबिनी? कह रहे वाह चाय काशी थी, बहुत आनंद में थी, थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन अगली बार इंतजाम करके पहले से ही चलूंगा। अरे ठीक है, 15 दिन बाद फिर एकादशी आई शुक्ल पक्ष की। तो फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप ऐसा करिए 8 किलो के करीब चावल दीजिए, क्योंकि क्या है वहाँ पर राम जी आ जाते हैं। तो बाकी सारे भक्त तो बोले लगे, क्रिटिसाइज होता है ना भक्तों के भी, अरे क्या पागल पति की बात करते हो, क्या भगवान राम कभी आएंगे? अरे खुद ही खाता होगा, इसकी भूख बढ़ गई है महाराज, जंगल में जाके पता नहीं क्या करता है ये। अरे लेकिन आचार्य थे वो जानते हैं, गुरु जो है वो हृदय में स्थापित होते हैं अपने शिष्य के, जिसको दीक्षा देते हैं। तो गुरु जानते हैं सब कुछ, क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है इसके मन में, क्या अच्छा कार्य कर रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं। गुरु जी मैंने ना 16 माला का जप एक जगह बैठ के करना शुरू कर दिया है। गुरु जानते हैं ना, गुरु जी ऐसे पकड़ के रोक के पूछ लेते हैं आपका जब अच्छा नहीं चल रहा, पूछ लेंगे अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा, और आप बोल देंगे नहीं महाराज ठीक है, लेकिन गुरु भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि गड़बड़ है, गुरु को बताने की जरूरत नहीं। तो गुरु जानते थे कि रामचंद्र जी आए, फिर उसके बाद 8 किलो का भोग लगाया उन्होंने बनाया। फिर राम जी को याद किया, फिर रामचंद्र जी ने सोचा देखो पूरा दिन निकालेगा, इससे अच्छा अभी चला जाता हूँ। तो भगवान राम और सीता आ गए, जब राम सीता आए तो 2-2, 3-3 किलो सीता राम दोनों ने खाया, तो वो हैरान हो गए, बोले वाह 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 राम जी आया है साथ में मैया को भी ले आए हैं, ए बेचारे भगत के लिए 1.5 किलो बचा, अब जैसे तैसे गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने खाया खा के फिर जब पहुंचे तो आचार्य जी ने दूसरे दिन पूछा कि कैसा रहा, अच्छा था इस बार रामा भगत? अरे महाराज कमी पड़ गई। अरे भगत बोले महाराज 8 किलो चावल खा गया फिर कह रहे कमी पड़ गई? महाराज ये तो बेकार है महाराज, इसको तो हटा दो यहाँ पे, भक्ति नहीं कर पाएगा ये, इतना तो इसको प्रसाद में इंटरेस्ट है, भजन में इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं 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 मैं जानता हूँ क्या कर रहा है। तो अगली बार के लिए उन्होंने फिर 10 किलो चावल लेके एकादशी पर पहुंचे। जब पहुंचे तो रामचंद्र जी का भोग लगाया तो आँख खोली तो देखा सीताराम लक्ष्मण भी आ गए हैं घर, और फिर वो 1.5 किलो। अरे आप लोगों ने सोच लिया है, बता दो भैया कितने कितने आओगे, हर बार तुम प्लान करके ले आओ पहले से। तो ये होता है भक्त का रिलेशन भगवान से, है कितना आनंद है इसमें, इस कथा में कितना आनंद है इसमें, देखिए कितना भगवान पर विश्वास है कि भगवान आएंगे, भगवान से वार्तालाप है। हमारे लिए तो भगवान क्या है, पेंटिंग है, अभी उठाएंगे इसको, फिर कहीं दीवार पे टांग देंगे, फिर थर्सडे को उतारेंगे, फिर लगा देंगे माला टांग देंगे। बोले जी नियम है, प्रवचन होता है। नियमग्राही नहीं है भगवान, भावग्राही है। भाव नहीं है भगवान का, जमीन में रख देता है कोई इसको, पेंटिंग को उतार के इसके ऊपर कपड़ा बांध देते हैं, भगवान सांस नहीं लेंगे। भाव नहीं है, भगवान की फोटोज होती है, कार्ड पे होती है, जमीन में फेंक देते हैं। भाव नहीं है हमारे अंदर। जब ये भाव नहीं है ना, तो भगवान दीवार में इतनी सुंदर मूर्ति बना दोगे फिर भी दिखाई नहीं देंगे। मायापुर जाओगे ना, चक्कर परिक्रमा लगाते रहना पूरा जीवन, भगवान नजर नहीं आएंगे कभी भी। क्यों? भाव नहीं है। जब भाव आएगा तो फिर भगवान नजर आएंगे। वो इस पेंटिंग में भी आ जाएंगे, आपके छोटे से पॉकेट में भी आ जाएंगे, पर्स के अंदर जो फोटो उसमें भी भगवान नजर आ जाएंगे। वहीं से वो बहुत ग्रेट करेंगे, जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। तो फिर उन्होंने इसे प्लान किया और आकर बोले कि महाराज इस बार जो है मेरे को आप 15 किलो के करीब चावल देना, इस बार बहुत अच्छी पंगत होने वाली है इसी काशी के लिए। महाराज बोले ठीक है भाई, ले जाओ, रामा भगत को दे दो, एंट्री भी फ्री होगी। ले गए, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला, इस बार बोले 15 किलो बनाएगा कौन, ये भी तो टेंशन है, अकेले से तो बनेगा नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, रामचंद्र जी को पहले बुलाया, भगवान राम आए तो बोले देखिए आप ड्यूटी बांट दीजिए भगवान, लक्ष्मण जी जो है पानी भरेंगे, सीता जी जो है वो भोग बनाएंगी, और हनुमान जी बांटेंगे, और राम जी आप तो क्या दरबार के मालिक हैं, आप पाएंगे और फिर बाद में आपका बदास मैं पाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। फिर क्या हुआ, वहां पे जंगल में बहुत बढ़िया पंगत लग गई और फिर रोज ऐसे खाना बनने लगा। हर एकादशी पे भगवान 15 किलो लाते, चावल आ जाता, रामचंद्र जी जो है बैठ जाते, लक्ष्मण जी और सीता जी बनाते और चल हनुमान जी सर्व करते, रामचंद्र जी खाते और चल बचा हुआ रामा भगत खाते। फिर एक बार उनके आचार्य जी वहां से परिक्रमा के लिए जा रहे थे, पूरे साल एक साल की वार्षिक परिक्रमा के लिए। तो उन्होंने बोला किसको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाऊं अपने मंदिर की, सीताराम का ठाकुर दरबार है, इसकी देखभाल कौन करेगा? तो फिर सारे भक्तों ने बोला आप सोचिए महाराज आप किसको देना चाहते हैं। बोले मेरे हिसाब से तो रामा भगत है। बोले हो गया, फिर तो सारा भंडारा अकेला खा जाएगा, बोलेगा रामचंद्र जी खा गए, रामचंद्र जी खा गए। तो बोले हो गया, फिर तो कोई पीस प्रोग्राम नहीं होगा, थर्सडे को सारे भक्त भूखे चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें? मैं बोले नहीं नहीं मुझे विश्वास है कि रामा भगत ही कर सकता है। और सारे लोगों को बोल दिया देखिए अगर कोई मंदिर में इसको परेशान करे तो, या फिर जो होते हैं जनरल स्टोर होते हैं उनको बोल दिया कि आप इसको फ्री में थोड़ा सा दे देना, पैसे ना दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सारा मंदिर के दान से चुका दूंगा, लेकिन आप इसको कहीं रोकना मत, इसको सेवा करने देना। वो जानते थे कि इसकी सेवा ठाकुर जी की डायरेक्ट सेवा चल रही है, लेकिन दर्शन गुरु जी को नहीं हुए थे। किसको हुए थे? रामा भगत को हुए थे। जबकि गुरु जी दीक्षा प्रदान करने वाले थे लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। वो तत्व से भगवान को जानते थे लेकिन दर्शन नहीं हुए थे। एक बार जब वो वार्षिक परिक्रमा खत्म करके आए तो देखा हाल बुरा है, मंदिर का दरवाजा बंद है, दर्शन के समय 10:30 बजे दर्शन बंद है, और अंदर क्या चल रहा है? बोल दिया कि पंगत चल रही है, लोग ठक 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 कर रहे हैं, मंदिर से कोई बाहर नहीं निकल रहा। अब महाराज बोले, लोगों ने बोला महाराज रामा भगत था ना, पागल हो गया आपका, भजन करते करते पागल हो गया, जैसे मीराबाई के लिए बोलते हैं ना लोग, वैसे बोलने लगे। अरे वो तो पागल हो गया, भजन ही करता रहता है, गेट ही नहीं खुलता, मंदिर के दर्शन ही नहीं कराता, सुबह थोड़ी देर के लिए खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। बोले ऐसा क्या हो गया? तो वहां पर खिड़की थी जो सिर्फ महाराज जानते थे, वो जो आचार्य थे उन्होंने खिड़की को खोल के देखा तो अंदर का दृश्य देखते हैं, और दृश्य देख के वो शब्द रह गए और उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी अपने दरबार में नहीं है, कहाँ है? उनके मंदिर के प्रांगण के अंदर सामने भोग लगा हुआ है, बहुत सुंदर रामा भगत ने बनाया हुआ है, और सब खा रहे हैं, और वो बार बार सबको सर्व कर रहा है रामा भगत अपने हाथों से। और इसीलिए उसने बाहर लिख दिया था क्या कि दरवाजा बंद है, क्योंकि सब लोग आएंगे तो भगवान से मूर्ति में चले जाएंगे, क्योंकि लोग भगवान भी क्या है? भाव जानते हैं। तुम मुझे मूर्ति मानते हो मैं तुम्हारे लिए मूर्ति हूँ, तुम मुझे भगवान मानते हो मैं तुम्हारे लिए भगवान हूँ, है ना। तो भगवान ने भगवत गीता में भी क्या कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि अहम्, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा मतलब जो जितनी परसेंटेज से मुझे सरेंडर करेगा, मुझे भगवान मानेगा, मुझसे विश्वास करेगा, उतना ही मैं आपको रिजल्ट दूंगा। आपने अपने ऑफिस में भी देखा है ना, जितना काम करोगे उतना पैसा बढ़ेगा, प्रमोशन होगा। जब मेटीरियली ये चीज जो भगवान की बनाई हुई है वो वहां एप्लीकेबल है तो वहां नहीं होगी। जो जितना शरणागत होगा, जितना विश्वास करेगा, जितना भाव भगवान के लिए उत्पन्न कर पाएगा, उतना ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। और इसीलिए रामा भगत के लिए भगवान आए और किसी भक्त के लिए नहीं आए। तो आप चाहते हैं कि आपके घर में ठाकुर जी आए, आपका भोग ग्रहण करें, तो उसके लिए क्या करिए कि भाव से भगवान के लिए भोजन बनाइए। जब बनाए तो उस समय कैसे चला देना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी का चैंटिंग बॉक्स, और घर में माता जी लोगों को ठाकुर जी का ध्यान करते हुए भोग बनाना चाहिए। और जो बनाया जाता है वो भोग होता है ना, ताकि उसे भगवान भोग सके। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा शांति मृच्छते। शांति कैसे मिलती है, जो ये जानता है कि इस पूरे संसार में भोगने की वस्तुएं जो है वो मेरे द्वारा भोगी जाती है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों में भोगना वाला मैं हूँ। आप सोचे कि आप दुर्गा देवी का प्रसाद लगा लें और वो प्रसाद बन गया, लोग जाते हैं वैष्णो देवी या कहीं पर, हमें सारे देवी देवताओं की रिस्पेक्ट है, सबको प्रणाम करना चाहिए, सब वैष्णव है, लेकिन जो है वो क्या है, वो भोग नहीं सकते हैं। भोगने वाले कौन है, सिर्फ कृष्ण है, वो भोगता राम यज्ञ तपसाम है। इसलिए भगवान का भोग लगाएं और जब भगवान उसको पा लेते हैं, कैसे पाते हैं भगवान जानते हैं, आंखों से और कानों से। भगवान मुख से नहीं खाते, आप कहेंगे भगवान हमने तो मुख चलते नहीं देखा कभी भगवान का, भगवान आंखों से पाते हैं कानों से। जब आप मंत्र बोलते हैं नमो विष्णुपदाय ऐसे बोलते हैं ना, नमो ओम ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मनिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, भाव से बोल रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। तो जितनी परसेंटेज में वो बोलेंगे उतने में भगवान खाएंगे। और आंखों से कितना स्वादिष्ट बनाया है, कितने तरीके से इसने मुझे रखा है, और किस भाव से ये भक्त मेरे को भोग लगा रहा है। आंखों से भाव को देखेंगे, कानों से मंत्र को सुनेंगे। इसीलिए इधर उधर सब जगह मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है, वो भाव नहीं है, बनाया खाना खाना और जो भोग भगवान के आगे रखा, पर्दा बंद किया, घंटी बजाई, पर्दा खोल दिया, खोल दिया। आपको खाने के लिए 25 मिनट चाहिए और भगवान खाने के लिए सेकेंड, लोग सोचते ना वो तो भगवान है, लेकिन भगवान को भाव से। इसमें जैसे यशोदा मैया है, उनके लिए भी भगवान है, पूरा दिन उनके लिए मक्खन निकाल रही हैं, दूध बना रही हैं, उनको खिला रही हैं, भाव होना चाहिए। स्वामी है तो आप भाव को खिलाओगे, भाव से खिलाओगे, पुत्र है तो भाव से खिलाओगे, दोस्त है तो भाव से खिलाओगे, और अगर पत्थर है तो फिर एक सेकेंड में उठा लोगे। पत्थर के लिए तो हम थोड़ी वेट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ठाकुर जी आए तो आपको ये जीवन में धारण करना चाहिए। ऐसे समय हो चुका है, लेकिन एक ये जो प्रसाद सेवन के पहले की प्रार्थना है इसको हमको पढ़ना चाहिए। ये प्रसाद सेवन की प्रार्थना इस बुक में है वैष्णव आचार्य की, जिनके पास नहीं उनको लेनी चाहिए। और भगवान का भोग ग्रहण करने से पहले ये मंत्र बोलना चाहिए। क्या मंत्र है, अभी हम प्रसाद खाने वाले हैं पर हम मंत्र पहले बोलेंगे। जानते हैं सभी लोग, बोलिए मेरे पीछे, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वतो नव जायते शरीर विद्या जार दरिद्रिय तारिका जीवे फैले विशेष आग्रे सार मध्ये धीमति लोभमये सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिवारे दिव्य जय कौपसाद अन्न दिल भाय अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम लाखो श्री चैतन्य ताय जय माय जयताय। तो ये जो है मंत्र, इसका अर्थ पढ़ेंगे, सिर्फ 3-4 लाइनें हैं, समझाने का समय तो नहीं है लेकिन पढ़ने का प्रयास करते हैं, शायद आपने कभी ना पढ़ा हो कि इसका अर्थ क्या है। पहली लाइन का अर्थ है गोविंद के महाप्रसाद नाम तथा वैष्णव भक्तों में स्वल्प पुण्य वालों को विश्वास नहीं होता। जिस व्यक्ति के पुण्य नहीं है, स्वल्प पुण्य मतलब जिस व्यक्ति के कम पुण्य उसने जीवन में किए हैं, उसको कभी प्रसाद में विश्वास नहीं हो पाएगा। शरीर अविद्या का जाल है, ये तो हम सब जानते हैं कि शरीर जो है इग्नोरेंस अविद्या का जाल है। जड़ी इंद्रिय जीव की कटुर शत्रु है, और इस पूरी इंद्रियों में जीव जो है हमारी जिह्वा ये सबसे बड़ी कटु शत्रु है, क्योंकि वो जीव को भौतिक विषयों के भोग के इस सागर में फेंक देती है। इन इंद्रियों में जिह्वा अत्यंत लोभी तथा दुर्मति है, संसार में इसको जीत पाना बहुत कठिन है। तो ये जीव हमको इधर उधर गोलगप्पों की तरफ ले जाती है, चाट पकौड़े की तरफ ले जाती है, मिर्ची खाने की तरफ ले जाती है, बिना भोग के खाने की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये जिह्वा हमारी जो है इंद्रियों में सबसे खतरनाक है। इसी को कंट्रोल कर ले, इससे भगवत नाम ले, भगवत कथा करें, प्रजल्पा ना करें, भोग खाएं, कितने काम है जीव के, और सारा गड़बड़ जो है वो जीव ही करती है। हम इधर उधर की बातें करते हैं जीव से करते हैं, भगवत नाम नहीं लेते जीव के कारण, इधर उधर का खाना खाते हैं जीव के कारण। ये जीव जो है बहुत ही कट्टर शत्रु है। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, जिन्होंने जिह्वा को जीतने हेतु अपना प्रसाद अन्न दिया है। अब कृपया उस अमृत प्रसाद को ग्रहण करें, श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करो तथा प्रेम से चैतन्य निताई को पुकारो। तो प्रेम से चैतन्य निताई को पुकारे और भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण बड़े दयालु हैं। भगवान ने दया का सागर होकर दया के कारण करुणा अवतार के कारण भगवान हमको क्या करते हैं, प्रसाद हमारे लिए देते हैं। तो हमें इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आज से सभी लोग भगवान को, जो लोग नहीं लगाते थे, अभी सिर्फ 5-6 लोगों ने लगाया, हाथ खड़ा किया था जब प्रश्न पूछा था, तो सबको भगवान को भाव से भोग लगाना चाहिए, है ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी बस सार है, भाव से बजे तो भक्त मेरा पार है, भाव के बिना कुछ भी कभी मैं लेता नहीं, और भाव से कोई मुझे दे फूल तो कार है, फूल भी अगर देता है तो मुझे स्वीकार है। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ते अप्रयच्छति, भक्ति से जो मेरे को देगा पत्ता पानी फूल वो भी मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन 56 भोग लगा दो दुर्योधन की तरह और मन में हो षड्यंत्र तो भगवान नहीं खाएंगे। साग विदुर घर का आयो, है ना, भगवान ने साग विदुर के घर पे जाकर कच्चा साग खा लिया, केले के छिलके खा लिए, लेकिन 56 भोग नहीं खाए विदुर और दुर्योधन के, है ना। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर का आयो। तो याद रखिए भगवान को भाव से डेली जो कुछ भी आप खाते हैं नियम बांध लीजिए, चाहे वो बिस्कुट हो पानी हो जो कुछ भी खाते हैं, पहले ठाकुर जी को अर्पित करिए, तुलसी अर्पित करिए, उसके ऊपर प्रणाम मंत्र बोलिए, 10 मिनट वेट करिए और उसके बाद उठाकर उसको ग्रहण करिए, आपका जीवन कृष्णमय हो जाएगा। हरे कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या प्रश्न क्योंकि तो उसके अंदर अन्न आता है ना, अन्न शब्द आता है, तो उस दिन हम ना अन्न खाते हैं ना हम अन्न बोलते हैं, क्योंकि हम अन्न पा ही रहे ना। इसमें क्या है, सो प्रसाद अन्न दिल भाई, अन्न खाने के लिए बोलते हैं, अन्न नहीं खाते इसलिए हम हाफ, क्योंकि हम जो है वैष्णव आचार्य पद्धति का पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें क्या करना चाहिए, एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है अनुवर्तन, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यस। जैसा हमें आचार्य गुरु ने बताया, चैतन्य महाप्रभु की हम परंपरा में आते हैं, हमारी परंपरा का नाम है ब्रह्म माधव गौरीय संप्रदाय। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, माधव मतलब माधवाचार्य और गौरीय मतलब चैतन्य महाप्रभु। अगर हम उस संप्रदाय में आते हैं तो संप्रदाय में सबने एकादशी का पालन किया है, तो हम फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्य। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक होती है रागुणगा भक्ति और एक होती है वैधी भक्ति। वैधी मतलब नियम अनुसार, रागवन मतलब भाव अनुसार। लेकिन अभी हम भाव के धरातल पर नहीं है, उस भाव के धरातल पर जाने के लिए हमको वैधी के थ्रू जाना पड़ेगा। हम एकादशी के कारण जो है कितना अच्छा भजन कर पाते हैं, सत्वगुण में रह पाते हैं, अदरवाइज हम अभी सत्वगुण में तो है नहीं, रजोगुण और तमोगुण के बीच में युद्ध चलता रहता है, और उससे अगर पार पाना चाहते हैं तो हमें नियम, अभी हमें नियम के दौरान चलना पड़ेगा। लेकिन हमें धीरे धीरे विश्वास करना चाहिए कि एक दिन हमारे हृदय में भाव जागृत हो जाएंगे, और भाव जब जागृत होंगे तो हमें किसी से टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, प्रभु जी जरा चेक करके बताना ऐसे बुखार है कि नहीं है, तो ऐसे प्रभु देखना भाव जागृत हुए कि नहीं हुए। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी 6-7 साल हो गए भाव नहीं आगे देखना, तो भाव कैसे जागृत होंगे हमें पता चलेगा, जब हमें भूख लगती है और प्रभुपाद जी कहते हैं जब खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, कौन बताता है, चेक करवाते हैं किसी से, कौन बताता है, हम खुद हमें पता होता है कि हमारा हमें पेट हमारा भर गया, हम संतुष्ट हैं, है ना, मन से भी संतुष्ट है, पेट से भी संतुष्ट है। वैसे ही जब हम असली भक्ति करेंगे, राग उनका भक्ति करेंगे, भाव से भक्ति करेंगे, तो हमें किसी से टेस्ट करानी है, कोई नियम फिर पालन करने की जरूरत होगी या नहीं होगी, आप अपने आप ही नियम पालन करेंगे। जैसे एक महाराज आए थे, वो बोलते हैं इफ समबडी इज नॉट चैंटिंग 64 राउंड्स ही इज फॉलन, अगर कोई व्यक्ति 64 माला का जप नहीं कर रहा है तो वो पतित है, और अगर कोई व्यक्ति 64 माला का जप कर रहा है तो वो ये मानता है कि मैं पतित। तो कोई व्यक्ति अगर भाव से भजन करने लगेगा फिर उसको नियम बताने की जरूरत नहीं है, एकादशी रखो नहीं क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे, क्योंकि वो जान जाएगा मेरे ठाकुर जी को पसंद है, ठाकुर जी को क्या पसंद है, भगवान क्या है, सारे व्रतों में मुझे एकादशी पसंद है।
तो ये अलग अलग धाम है, जैसे वो धाम है जगन्नाथपुरी, वहां के पंडों का अलग भाव है, लेकिन हमारा वो भाव तो नहीं। वो एक साथ में जो है, आप सोचिए सुबह 4 बजे ठंड के महीने में अभी भी ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं और ठंडा पानी निकालते हैं कुएं से खींच के और ऊपर वो झंडा लगाते हैं, 180 फुट ऊंचा पिलर है उसके ऊपर चढ़कर खुद डेली झंडा चेंज करा जाता है पूरा, मतलब और कोई तो फसल ही जाएगा मर जाएगा, हमसे तो होगा भी नहीं, वो डेली झंडा चेंज करता है। किसकी खुशी के लिए? ठाकुर जी की खुशी। हम कर पाएंगे? हमें बोलते हैं प्रभु जी आप भाव के स्टेटस में कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पर ऊपर शर्ट नहीं पहनी, कुर्ता भी नहीं पहनना, फिर क्या है ना भगवान खुश हो जाएंगे। हम कर पाएंगे? 1-1.5 घंटे करेंगे और उसके बाद बुखार हो जाएगा, 3 दिन तक सेवा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए वैदिक भक्ति के थ्रू हमें भाव तो चलता नहीं। देखिए जब हम भगवान को ठाकुर जी को भोग लगाते हैं डेली, तो हम भगवान का गिलास रखते हैं, उस गिलास में तुलसी डालनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। जब भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे तो नेक्स्ट डे उसके दूसरे दिन आप उस पानी को लेके अपने पीने वाले पानी में, जिसमें से आप ठाकुर जी का पानी भरते हैं वो पानी नहीं, जिस पानी को आप पीते हैं उस पानी में उसे डाल देंगे, तो सारा पानी क्या होगा? कृष्ण प्रसाद मिल जाए। आप पूरा का पूरा चावल तो उठा के भगवान का नहीं लेते, कुकर ले आके भगवान जी लो पूरा खाओ चावल है, क्या करते हो थोड़ा सा निकालते हो भगवान की प्लेट लेते हो और तुलसी डाल के भगवान को ऑफर देते हो, फिर उसको चावल को लाके मिक्स करते हो तो सारा प्रसाद बन जाता है। क्योंकि भगवान का सलाइवा होता है ना थूक, ये भगवान हमारे प्रसाद में भोग में डालते हैं तब वो प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है ना, उसी के कारण सबकी चेतना बदलती है। तो भगवान उसमें से भोग में से पाप निकाल लेते हैं और क्या करते हैं अपना सलाइवा थूक उसमें डाल देते हैं और उससे वो सारा कन्वर्ट हो जाता है कृष्ण प्रसाद में। भगवान से वार्तालाप शुरू हो जाएगा उसका, जैसे शिल प्रभुपाद है उसके अंदर मर्सी आ जाएगी लोगों के लिए, प्रेम बढ़ जाएगा, हरि नाम करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा, 4 माला सुबह हुई 8 माला पेंडिंग है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। फिर होगा रुचि पूर्वक आप जब करोगे, फिर आपसे लोग छीन लेंगे माला तोड़ देंगे, फिर भी आप उंगलियों को काट के माला बना लोगे, लेकिन माला बनाओगे नाम रखोगे, भगवान के नाम आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। जैसे धन है ना, इस धन को सिक्योर करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, लॉकर, ये अकाउंट, वो अकाउंट, स्विस अकाउंट, पॉकेट में पर्स होगा तो उसको 3 बार चेक करेंगे, माला की थैली ऐसे जा रही है कोई पता नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ये पर्स नहीं जाना चाहिए, माला चली भी जाएगी कोई नहीं, थर्सडे को फिर ले लेंगे, लेकिन पर्स चला गया तो फिर कमा लेंगे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं वहां टेंशन हो जाती है। जैसे उससे प्रेम करते हैं उससे ज्यादा इससे प्रेम करना चाहिए। कहते हैं एक लेक्चर में मैंने सुना था, एक आचार्य बता रहे थे कि ये जो है माला हमारा गोलोक धाम है, सारा गोलोक धाम, जिसकी इसके प्रति श्रद्धा है वो व्यक्ति धाम में एंटर करता है। ये जितने भी प्रवचन, जितना भी प्रसाद, जितने भी कीर्तन, जितने हरिनाम, जितनी परिक्रमा, जितने दर्शन, इन सबका सार एक है, हरिनाम में रुचि होना। जिसकी रुचि उत्पन्न नहीं समझ लो कहीं ना कोई गड़बड़ चल रही है। जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी हरि नाम में, मेरी भी नहीं हुई, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है और मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं हूँ, मेरी भी रुचि उत्पन्न नहीं है, मुझे भी फोर्स ली क्योंकि गुरु को प्रतिज्ञा की है कि हम 16 माला का जप करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तो प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें भी कभी मोबाइल बजता है तो देख लेते हैं, है ना, किसी ने बोला तो बीच में बोल देते हैं, हमें लगता है कि और कार्य ज्यादा जरूरी है बजाय इसके, लेकिन हरि नाम इतना इम्पोर्टेंट। आप पैसे गिन रहे हो 1,000 की गड्डी, कोई बोले हाँ सुनना प्रभु जी और जब कर रहे हो तो हाँ बोलो, हाँ एकदम से निकलते, क्योंकि हमें पता है इसमें ध्यान नहीं है हमारा। जब ध्यान होगा तो ऑटोमेटिकली बताने की जरूरत नहीं कि इसके प्रति ध्यान है नहीं, शुद्ध सत्व क्या है, सिक्योरिटी क्या है, प्रभु जी अपने आप आपको आनंद आ जाएगा। हाँ पर भाई फोर्स प्रभुपाद कह रहे अगर आनंद नहीं भी आ रहा है तो आप भाई फोर्स लीजिए, क्योंकि ये क्या है अभी हम भाव में नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको औषधि के रूप में ले रहे हैं, मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, दवाई लेते रहेंगे तो एक दिन आनंद आने लगेगा। ठीक है पर जी मंत्र कुछ नहीं, क्या आपने मंत्र पूछा कुछ, क्या मंत्र? हाँ वो मंत्र की बुक बाहर मिलती है, पहले श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ते हैं, फिर महाप्रभु का मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद में भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़ते हैं, और अगर मंत्र हमें याद नहीं है तो कम से कम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र और 3 बार हमें पंचदत्त मंत्र पढ़ना चाहिए, और अगर हमारे पास बुक है प्रयास करें कि सीखें जो भगवान को पसंद है वो चीजें, तो वो मंत्र 3 बार पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद प्रणाम, फिर 3 बार महाप्रभु मंत्र, उसके बाद में 3 बार कृष्ण मंत्र, फिर पंचतत्व मंत्र और फिर हरे कृष्ण मंत्र, इसको पढ़ने से साथ में घंटी बजाए भगवान की और भगवान को प्रार्थना करें, भाव से ऑफर करें, फिर पा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान खा नहीं रहे आपका वो, सिर्फ भाव दे रहे हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी, कीर्तन करें। एक सवाल प्रभु जी, एक सवाल
तो अच्छा है,
मैंने तैयारी तो नहीं करी थी, पर प्रभु जी का फोन आया, जो मन में है वो बोल दिया, गलत हो तो मुझे माफ करिएगा।